તારીખ 26/2/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 171 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
પત્રાંક 833 સર્વ દ્રવ્ય છે, સર્વ ક્ષેત્ર છે, સર્વ કાલ છે ઓર સર્વ ભાવ છે. જો સર્વથા અપ્રતિબદ્ધ હોકર નિજ સ્વરૂપ મેં સ્થિત હુએ ઉન પરમ પુરુષો કો નમસ્કાર. પ્રથમ વચન મેં વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કો નમસ્કાર કિયા હૈ કે જો પરમ પુરુષ હૈ માને સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મા હૈ જો અપને સ્વરૂપ મેં સ્થિર હો ગયે હૈ ઓર જગત કે સર્વદ્રવ્ય સર્વક્ષેત્ર સર્વકાલ ઓર સર્વભાવ મેં જિસકે પરિણામ બિલકુલ પ્રતિબદ્ધ નહીં હોતે પ્રતિબદ્ધ નહીં હોતે મેને લગતે નહીં કહીં ભી અન્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ મેં વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમ પુરુષ કા પરિણામ લગતે નહીં. અનાદિ સે સંસારી જીવ કી સ્થિતિ યહ હૈ કે સભી કે પરિણામ અન્ય દ્રવ્ય મેં હી લગતે હૈ, અન્ય ક્ષેત્ર મેં લગતે હૈ, અન્ય ભાવ મેં લગતે હૈ, અપને સ્વરૂપ મેં નહીં લગતે. યે હાલત હૈ સંસાર મેં જીવ. જો વિતરાગ સર્વજ્ઞ હોતે હૈ वो एक ऐसा अलौकिक पुरुषार्थ करते हैं सभी परद्रव्य क्षेत्र कालभाव से परिणाम को छुड़ा करके अपने स्वरूप में लगाते हैं, स्थिर हो जाते हैं. ऐसा होना ये कोई अलौकिक पुरुषार्थ का पराक्रम है, कोई मामूली बात नहीं है. मामूली बात इसलिए नहीं है कि परद्रव्य के प्रति जीव के परिणाम सुख बुद्धि के कारण से लगते हैं, आधार बुद्धि के कारण से लगते हैं. किसी न किसी संयोग को हमने आधार बना लिया है और हमारी सुख बुद्धि भी वहाँ रही, इसलिए परिणाम का दूसरों ऐसा निश्चित किए हुए पदार्थों के प्रति प्रतिबद्ध होना अनिवार्य हो जाता है. परिणाम बिना विचार किए दौड़ते हैं, चले जाते हैं. ऐसी परिस्थिति में वितराग सर्वज्ञ पुरुष ने परिणाम अपने स्वरूप में समेट लिए हैं, कर दिए. तो यहाँ ज्ञानी पुरुष भी इसको नमस्कार करते हैं कि ऐसे परम पुरुष को हम नमस्कार करते हैं. परिणाम जितने परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगते हैं उतने परिणाम उतने प्रमाण में उतने अनुपात में वो दूषित होते हैं. दोष की उत्पत्ति भी यहाँ से होती है. सुख बुद्धि के कारण से, आधार बुद्धि के कारण से, अपनापन के कारण से और कर्ता भोक्ता बुद्धि के कारण से परिणाम लगते हैं और परिणाम में दोष की उत्पत्ति, राग, मोह, द्वेष आदि परिणाम, मलिन परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। ये मलिनता के कारण से जीव को स्वयं को दुख होता है और उसके फल स्वरूप चारों गति में परिभ्रमण करने की परिस्थिति रोकी नहीं जाती, बंद नहीं कर सकते। इस जीवन में जितना राग द्वेष मोह किया, आयु पूरा होते ही इसको भोगने के लिए, किए हुए कर्म को भोगने के लिए अनिवार्य रूप में जाना होगा। बहुभाग जीव दुर्गति में चला जाता है। जो जीव सम्यक मार्ग में नहीं आता, ऐसे लोग दुर्गति में चले जाते हैं और वहाँ बहुत दुख को भोगना पड़ता है। ऐसे दुखों से बचाने के लिए ज्ञानियों ने निष्कारण करुणा से सही रास्ता बताया। अगर किसी को दुख से छूटना है, दुख से छूटना है मतलब वो नहीं कि अनुकूलता प्राप्त करनी है, प्रतिकूलता मिटानी है, वो बात नहीं है। यहाँ तो आकुलता से, टेंशन के दुख से, आकुलता के दुख से छूटना हो और निराकुल सुख शांति, किसी भी हालत में निराकुल सुख शांति ही अंदर से प्राप्त हो, बाह्य परिस्थिति की जिसमें अपेक्षा नहीं हो, ऐसा आत्मिक सुख की अभिलाषा जिसको हो, उनके लिए ज्ञानियों ने सही मार्ग निर्देशन कर दिया है कि ये मार्ग है, ये उपाय है, जिसकी भावना हो चले आओ। ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, पहले भगवान की वितराग सर्वज्ञ की प्रशंसा किया, स्तुति किया, नमस्कार किया। अभी जो ज्ञानी हैं, मुनिराज हैं, जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं है, जगत का कोई पदार्थ जिसको प्रिय नहीं, जगत का कोई पदार्थ जिसको अप्रिय नहीं, पर वास्तव में कोई पदार्थ प्रिय अप्रिय होवे ऐसा है भी नहीं। क्यों? कि जो पदार्थ है वो परमाणु स्वरूप है, वो परमाणु परमाणु की अवस्था अपने योग्यता अनुसार परिणमन कर रहा है। जीव को तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो अचेतन है, जीव चेतन है, कल्पना कर लेता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो कल्पना है, वास्तव में कोई ऐसी बात है ही नहीं। जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं है, जिनका कोई शत्रु नहीं है और जिनका कोई मित्र भी नहीं है, देखो क्या वितरागता होती है। शत्रु की कल्पना खुद नहीं करते, तो ये कहेंगे कि दूसरा जीव हमारे प्रति द्वेष रखता है, हमको शत्रु मान करके वर्तन करता है, तो वो शत्रु है कि नहीं है? नहीं है। तो उसको किस दृष्टि से ज्ञानी देखते हैं, यानी इस दृष्टि से देखते हैं कि वो बेचारा भूला पड़ गया है। क्या है? अपने स्वरूप को वो जानता नहीं और दूसरे को अपना जानता है। जिसको इसका राग है इसमें कोई बाधा पहुंची है, जिसका उसको राग है उसमें उसको कोई बाधा पहुंची है, और इसलिए वो किसी न किसी निमित्त को कारण समझता है। वो भी इसकी भूल है। निमित्त निमित्त होता है, कारण नहीं होता है। तो जो भी बाधा पहुंचाने वाला निमित्त है इसके प्रति उसको द्वेष आएगा, लेकिन ये इसकी भूल है। जैसे हमारे परिवार में बच्चे लोग होते हैं, ना समझ होते हैं। बच्चे लोग होते हैं मतलब ना समझ होते हैं। तो तीन चार साल के बच्चे घर में तोड़फोड़ भी करते हैं, हाँ, नुकसान करते हैं, और उसको बोलने का या उसको वर्तन करने का कोई ठिकाना तो होता नहीं। उसको बोले कि आवाज़ मत करो, चिल्लाओ मत, तो आवाज़ करेगा। तो ना समझ होते हैं उनके प्रति हम क्या करते हैं कि बच्चा है, ना समझें, करेगा कुछ टाइम, बच्चा है वहाँ तक करेगा, थोड़ी बहुत समझ आने से नहीं करेगा। ऐसे संसार में जो लोग शत्रुता रखते हैं, शत्रुता करते हैं, वो भी बच्चों के जैसे ना समझ हैं। इनके प्रति हमें कसाय होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे हैं, समझ लो, ना समझें, भूले पड़ गए हैं, अपने स्वरूप से भटक गए हैं, तो ऐसे ही करेंगे। उनकी दोषित पर्याय को गौण कर देना, वो भी एक आत्मा तो है, इसकी आत्मा को मुक्त करो, बात खत्म। इसलिए ज्ञानी को, मुनि को कोई दुश्मन नहीं है और कोई मित्र भी नहीं है। मित्र क्या होता है? राग करता है, अनुकूल रहने का, जैसे दुश्मन प्रतिकूल रहने का प्रयास करता है, वैसे ये अनुकूल रहने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे लिए कोई अनुकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं, कोई चीज हमारी है ही नहीं। कुछ टाइम तक संयोग होता है, कुछ समय तक सभी चीज़ों का संयोग रहता है, लेकिन कोई चीज़ हमेशा तो रहती नहीं। जैसे किसी की लाई हुई पराई चीज, ये शादी वगैरह प्रसंग में ले आते हैं ना, किसी के जेवर ले आते हैं, किसी की कोई चीज़ वस्तु ले आते हैं, तो दो दिन चार दिन आठ दिन अपने वहाँ रही, इसलिए कोई अपने तो थोड़ा कर लेते हैं कि चलो वापस भेज दो उनकी चीज़, और वैसे कि वैसे कोई ख़राब नहीं हो जाए। ऐसे सब चीज़ पराई है, कुछ टाइम तक हमारे संयोग में आई है, फिर इसका वियोग निश्चित है। हम पकड़ करके बैठेंगे उतना राग द्वेष मोह से परेशान होंगे, दुखी होंगे। अगर दुखी नहीं होना हो तो पराई चीज को पराई समझो, तो जो अनुकूल चलता है वो भी पराया है, जो प्रतिकूल चलता है वो भी पराया है। अनुकूल चलने वालों से भी राग मत करो। अगर आप अनुकूल चलने वालों से राग करोगे तो प्रतिकूल चलने वाले से द्वेष किए बिना रह पाओगे? अनिवार्य रूप से द्वेष हो जाएगा। आपको बाल का काला रंग पसंद है तो सफेद रंग पसंद नहीं आएगा, चमड़ी का सफेद रंग पसंद है तो काला पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक में राग होने से प्रतिपक्ष में द्वेष आए बिना रहेगा नहीं, और कोई सारा खराब है ही नहीं। अगर होता तो ये एक ही शरीर में दो अंग में हम ऐसा गड़बड़ नहीं करते कि इधर तो काला अच्छा है इधर तो सफेद अच्छा है, दोनों जगह एक ही कलर को पसंद करते हैं, लेकिन कोई हमारा ठिकाना नहीं है। अलौकिक पुरुषार्थ माने अंतर्मुखी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दो तरह का है, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक माने क्या, कि ये जो संसार के संग प्रसंग है उसमें हम हमारी शक्ति का खर्च करते हैं, ये हमारा लौकिक पुरुषार्थ है, उसको बंद करके, ये मिसयूज है, अपनी शक्ति का मिसयूज है। अब यूटिलाइज करना है कि हमारे में जो शक्ति है उनको हम हमारे स्वरूप में लगाएं तो सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, लौकिक के कंपैरिजन में कंपैरेटिव स्टेप, तो ये लौकिक के हिसाब से अलौकिक पुरुषार्थ है। इसकी जाति अलग है, इसका प्रकार अलग है, और लौकिक से विरुद्ध है इसलिए अलौकिक है। जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनका कोई मित्र नहीं, जिन्हें मान अपमान द्वंद्व का अभाव, द्वंद्व मैंने जोड़ का, दो साथ में रहता है मान और अपमान, तो जिसको मान की गिनती नहीं, जिसको अपमान की भी गिनती नहीं, मनुष्य पर्याय में ये सबसे कठिन बात है। मान अधिक प्रिय होता है और अपमान तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारी कल्पना है,
मान और अपमान से रहित होने के लिए क्या पुरुषार्थ
करना है? हाँ, वही बात करेंगे कि मान और अपमान दोनों हमारी कल्पना है, ऐसी सही समझ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, तो दोनों हमारी कल्पना है। जैसे कि आपने हमको इधर बैठाया, आप नीचे बैठ गए, हमको एक फुट ऊपर बैठा दिया, लोग कहते भी सम्मान किया मान किया, हमारे आत्मा को क्या लाभ हुआ बताइए, और आपको क्या नुकसान हुआ ये बताइए, है कोई लाभ नुकसान इस समय? अच्छापन की एक कल्पना कर लेते हैं और कुछ नहीं, कि चलो हमको ऊपर बिठा दिया, ये कल्पना से दिमाग ऊपर चढ़ जाता है। एक फुट ऊपर बैठने में दिमाग कितना फुट ऊपर चढ़ेगा, इसका ठिकाना नहीं रहेगा। मान हमको मिला इसमें दिमाग चढ़ जाएगा, और अपमान हुआ तो डिप्रेशन में आ जाएगा, फिर प्रोजेक्शन आने वाला है। दोनों कल्पना है, फिर भी आप कहेंगे कि कोई निंदा करते हैं कि आप तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, कई प्रकार के निंदा करेंगे, तो इसका तो लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं लगना चाहिए। आप कहेंगे कैसे नहीं लगेगा, हमारा नाम लेकर बोलता है, हाँ व्यक्तिगत हमारी बात चलाता है, कैसे नहीं लगेगा। देखो, अपने ही कुछ कर्म का उदय है, क्या है, जिसको कुछ ऐसा भाव हुआ वो अपने ही कुछ ऐसे कर्म का उदय है, वो उदय में वो तो बेचारा निमित्त है। अब हमारे मैले कपड़े साफ करने के लिए कोई अपना साबुन पानी सोडा लेकर के आए, खर्चा तो वो करता है। तो अपने को तो निष्कर्म शुद्ध होने का एक मौका देता है वो, तो हमारे लिए वो उपकारी है। क्या है? जो कोई हमारा काम कर देता है वो हमारे लिए तो उपकारी है। निमित्त को उपकारी जान लो, आपको अपमान का भी कुछ लगेगा नहीं, दूसरों को आश्चर्य होगा, अरे इसका अपमान होता है, उसको तो कुछ होता ही नहीं। तो ये तो बात रही समझ के, किसी भी घटना को हमें राइट एंगल से देखना है। अगर हमारा देखने का दृष्टिकोण ठीक है, योग्य है, यथार्थ है, तो कोई आपत्ति नहीं। देखने की दृष्टि गलत है तो सभी आपत्ति है। कल्पना से तो अंधेरे में भूत दिखेगा और रस्सी में सांप दिखेगा, पर फालतू का दुख होगा और कुछ नहीं। हमें भूत भूत को देखना नहीं है, अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है। हमारे ज्ञान प्रकाश में किसी का प्रवेश नहीं है। किसी भी पर संयोग का ज्ञान में प्रवेश नहीं है। इसलिए मान अपमान लाभ अलाभ दोनों लिए बात लिया है, ना हमें कोई लाभ है ना कोई हमें नुकसान है। आप बताइए आपको किस चीज में से सुख मिलता है, वो हमको बता दीजिए। एक चीज जगत में ऐसी हो कि जिसमें से आपको सुख मिलता है, ऐसी एक भी चीज बता दो। वो चीज बताएंगे हम आपको बता देंगे कि आप ये बात गलत है, आपको वहां से सुख नहीं मिलता है, आपको वहां से दुख चालू हो जाता है। सुख तो नहीं मिलता है, दुख चालू हो जाता है। एक भी चीज बता दीजिए, न वो चीज सुख का कारण है न चीज वो दुख का भी कारण है, दोनों हमारी कल्पना है। जैसे मान अपमान कल्पना है, ऐसे लाभ नुकसान भी कल्पना ही कल्पना है। ये वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान है। तो हमें ये महापुरुषों के वचनामृत से सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिलता है, सही समझ मिलती है, तो हमारी कल्पनाएं छूट जाती है। जो मिसकॉन्सेप्ट है, इसी का ही सब झमेला है। संसार में जितने तकरार है, क्लेश है, लड़ाई है, विग्रह है, युद्ध है, ये सब झमेला एक ही कारण से, मिसकॉन्सेप्ट। पर पदार्थ में सुख बुद्धि, पर पदार्थ में दुख बुद्धि, ऐसी जो कल्पना है, इसके कारण से संक्लेश हुए बिना रहेगा नहीं, दुख हुए बिना रहेगा नहीं।
हैं? आपको हमने मान लिया, थोड़ा ऊपर दिखाया, तो आपका मन में क्या भावना है? अच्छा लगा? कैसा लगा?
कुछ नहीं लगा।
अच्छा, उसी तरह से आपको नित्याम बिठाते, तो आपका मन में क्या आता
था? कुछ नहीं, तो भी कुछ नहीं, तो भी कुछ नहीं।
आप तो बहुबा नहीं करिए। हैं? आप तो बहुबा नहीं करिए।
नहीं नहीं, हम तो कहीं जगह नीचे बैठ जाते हैं, पीछे भी बैठ जाते हैं, आगे बिठाते तो मना भी कर देंगे, नहीं नहीं इधर ठीक है, कहीं सुनने को जाते तो नीचे बैठ जाते। सुनाने वाले ऊपर बैठते हैं, सुनने वाले नीचे, तो कहीं नीचे भी बैठ जाते हैं। कल्पना करनी नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि कल्पना करनी ही नहीं है।
ज्ञानी को तो भक्ति की जरूरत नहीं है हमारे गुणों में तरफ से, लेकिन हमें ज्ञानी की भक्ति जरूरत है अपने काम के लिए, तो क्या करें?
तो आपके आप जानो, हम इसमें क्यों माथा लगाएं? हम क्यों माथा लगाएं? आपके आप जानो। ऐसा होता है, ज्ञानी तो सब जानते हैं कि कभी तो आज भक्ति करने वाला कब क्या करेगा, इसका कोई भरोसा तो है नहीं। अगर आज हमको मोह हो गया भक्ति को, तो कल उसकी भक्ति से क्या होगा फिर? हाँ, तकलीफ हो जाएगी ना। इसलिए भक्ति करने वाला इसकी जाने, अपने को कोई लेना देना है ही नहीं। और किसी की भक्ति से ज्ञानी को कुछ लाभ तो होता नहीं। हम पूज्य सोगानी जी की बात करें, जब हमारा परिचय हुआ, हमको बहुत प्रमोद हुआ, इनकी अंतर्दशा देख करके हमको बहुत प्रमोद हुआ था। और क्या हुआ कि गुरुदेव जानते नहीं थे कि इनकी इतनी अंदर में बहुत अच्छी ज्ञान दशा है, और ज्ञान दशा तो हजारों लाखों जीवों में कुछ एक कोई प्राप्त होती है, और वो किसी से परिचय में आते नहीं थे, गुप्त रहते थे, और गुरुदेव से भी बातचीत नहीं करते थे, मौन रहते थे। तो पता कैसे चले? वहाँ तो बहुत से लोग, सैकड़ों लोग आते हैं, जाते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। हमने बोला एक दिन कि देखो भाई साहब, गुरुदेव का उपकार तो है आपके प्रति, तो हाँ बहुत बहुत उपकार है, वो तो इनकी चिट्ठी में सब बात मिलती है, बहुत उपकारी है, लेकिन वो आपके विषय में कुछ जानते नहीं, तो उपकार बुद्धि से कोई दो शब्द तो बोलिए कि हमारी आत्मा पे आपने बहुत उपकार कर दिया है, हम आपके असीम उपकार को भूल नहीं सकते, ऐसी कोई बात तो दो बात कर दीजिए। बोले कि इसमें अपना प्रयोजन क्या है? वो तो सब बात प्रयोजन से लेते हैं, अपना प्रयोजन क्या है? तो गुरुदेव अनजाने हैं, जानेंगे तो सही कि ऐसे भी कोई विरल जीव पैदा होते हैं यहाँ। क्या बोले कि मानो जान लिया, मेरे आत्मा को क्या फायदा होगा वो बताइए। मैंने कहा वो प्रसन्न तो होंगे, तो वो प्रसन्न होंगे तो होंगे, लेकिन मेरे आत्मा को क्या फायदा होगा? बोले कि दरअसल में बात ऐसी है कि कोई बात बना के जाना, प्री प्लान जिसको कहते हैं, प्री प्लानिंग करके जाना और बोलना कि मेरे से हो नहीं सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, इसलिए इस बात को छोड़ दो। और मुझे बोल दिया कि आप मेरे लिए बोझा क्यों उठाते हो, मेरे लिए आप क्यों बोझा उठाते हो? मैंने कहा अपना संग है तो सहज विचार आ गया कि गुरुदेव आपके विषय कुछ परिचित हो जाए तो अच्छा है। छोड़ो इस बात को, अपने को कहीं जाना आना नहीं है, अपना काम में लगे रहो, बस बात खत्म। बिल्कुल प्रसिद्धि में आने की बात ही नहीं, और प्रसिद्धि के विरुद्ध वो भगने की चेष्टा करते थे, और ऐसा कहते थे कि देखो सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया, ज्ञानी हो गए तो क्या हो गया, अभी तो बहुत काम बाकी है। और वर्तमान में अढ़ीद्वीप के बाहर जो स्वयंभू रमन समुद्र है, आखिर का जो समुद्र है जम्बू द्वीप का, असंख्य योजन का, उसमें नीचे रेत नहीं होती, सब रत्न ही होते हैं। जो रेत की जगह होती है बालू, तो सब रत्न ही रत्न होते हैं। वहाँ असंख्य जलचर प्राणी होते हैं, उसमें असंख्य अनंत होंगे, बहुत बड़ा समुद्र है, असंख्य योजन का है। उसमें सम्यक दृष्टि असंख्य है, कितने तिरियंज पशु गति के जलचर प्राणी असंख्य सम्यक दृष्टि है। क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसा बोलते पंचम गुण स्थानवर्ती भी होते हैं वो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपनों को मान अपमान की बात लेनी ही नहीं है कहीं, वो बहुत आदर्श वाले इनकी जो रहने की परिस्थिति थी बहुत आइडियल थी, एकदम आइडियल। सारी जीवों को उदय आठों कर्म का हमेशा हमेशा होता ही है। जैसे आयु कर्म है आठ में से, कब उदय चालू नहीं है, आयु से का उदय सबको चालू है कि नहीं है, क्या है? तो ऐसे बाकी के सात कर्म का उदय भी सबको चालू है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहनी साता साता वेदनी गोत्र नाम आयु
आठ।
नाम गोत्र मैंने जिस कुल में हम उत्पन्न होते हैं उसको गोत्र बोला जाता है। तो अब शादी के वक्त में वो महाराज लोग बोलते हैं इस गोत्र के हैं आप लोग, इस गोत्र के हैं आप लोग, इस गोत्र, वो जानते हैं ब्राह्मण लोग अपना गोत्र दादा पिताजी के से चला आता है, तो गोत्र बताते हैं कि इस गोत्र की कन्या है इस गोत्र का, क्योंकि पहले ने जमाने में एक गोत्र में सगाई नहीं करते थे, इस गोत्र की कन्या है इस गोत्र का वर पक्ष है, ऐसा करके बोलते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो बोलते हैं ब्राह्मण लोग, तो कुल परंपरा के हिसाब से ऊंच नीच गोत्र दो प्रकार के गोत्र हैं, और नाम कर्म के हिसाब से बहुत सी प्रकृतियाँ नाम कर्म की होती है। उसमें शरीर रचना दुबला पतला रूप कुरूप स्वरूप और ऐसे कीर्ति अपकीर्ति, ये सब नाम कर्म की प्रकृति में जाता है, ये सबको चालू है। वेदनी में साता साता सब जानते हैं। आठों कर्म का उदय सबको निरंतर चालू है, और जहाँ तक आत्मा में हमारे परिणाम नहीं लगते, उदय में परिणाम नियम से लगते हैं। परिणाम लगने के दो ही स्थान हैं, एक अपना आत्मस्वरूप, दूसरा उदय। या तो परिणाम उदय में लगे या तो हमारे आत्मा में लगे, तीसरी कोई चीज नहीं, तीसरी कोई जगह नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जिसको हर्ष शोक के परिणाम नहीं है उदय आश्रित, जिसको जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व का अभाव है, मेरा जन्म नहीं मेरा मरण भी नहीं, मैं अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ हूँ, कभी नया बना नहीं और न कभी मरने वाला है, मेरा नाश हो ही नहीं सकता। जब अव्याबाध हूँ तो अव्याबाध है तो नाश होने का तो सवाल ही नहीं। आदि द्वंद्वों का अभाव होकर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हुए हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो स्थित हुए हैं, भूतकाल में वर्तमान में स्थित होते हैं और भविष्य में स्थित होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम, पुरुषार्थ का पराक्रम कहीं भी कल्पना में आता नहीं, जिसको कल्पना होती नहीं, जो भी समझ है उसमें अडिग और अचलित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ऐसा जिसका पुरुषार्थ है, वो हमको सानंद आश्चर्य उत्पन्न करता है। हमको ऐसे वीतरागी पुरुषार्थमान आत्मा को देखकर आनंद भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि क्या पुरुषार्थ है इसका। हर्ष शोक के निमित्त में जो हर्ष शोकान्वित होते नहीं तो इसका पुरुषार्थ है तो नहीं होते हैं, उसके पुरुषार्थ के पराक्रम को देख करके आश्चर्य भी व्यक्त किया है और आनंद खुशी भी व्यक्त किया है। ऐसा वीतराग ताकी यहाँ प्रशंसा किया है, वीतराग ताकी भक्ति किया है और अपना प्रमोद को जाहिर किया है कि ऐसा हमको भी प्रमोद आता है, ऐसे आत्मा को देख करके हमको बहुत प्रमोद आता है। 10:35 हुआ है, यहाँ तक रखें, 10:30 में पाँच अपने 50 मिनट हुई था, 10 मिनट और लेंगे, 1 घंटा का पूरा। देह से जैसा वस्त्र का संबंध है वैसा आत्मा से देह का संबंध जिन्होंने यथा तथ्य देखा है। हम रोज वस्त्र बदलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम दिन में 3-4 दफे भी बदलने वाले होते हैं, अपने को इसकी चर्चा नहीं करनी, तो अलग हेतु है उसमें, लेकिन रोज नित्य नियम से कॉमन रूप से सभी लोग स्नान करते हैं, कपड़े बदल देते हैं, कितने नॉर्मल होते हैं। मेले कपड़े निकाल देना, स्वच्छ कपड़े को पहन लेना एकदम नॉर्मल है, हमारा रूटीन है, वो नॉर्मल रूटीन है, हो गया है, दुख नहीं होता है। वो कपड़ा जो निकाल दिया इसके लिए दुख नहीं होता है, और जो साफ कपड़े पहनने में कोई खास बात नहीं होती है, सुख हो जाए ऐसे, बहुत नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं। क्यों? कि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कपड़ा धोने में डालने से और दूसरे कपड़े पहनने से हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं समझते अपन। ऐसा संबंध वास्तव में देह और आत्मा का है। हमारी आत्मा देह बदलती आई है परिभ्रमण में, नए देह, पुराने देह को छोड़ देता है, नया देह को ग्रहण कर देता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, परिभ्रमण में होती ही रहती है। ऐसा संबंध जिस ज्ञानी ने देखा है उसमें हर्ष शोक करने की कोई जगह नहीं है, कोई बात ही नहीं है। देह से जैसा वस्त्र का संबंध है वैसा आत्मा से देह का संबंध जिन्होंने यथातथ्य देखा है। कपड़ा फटता भी है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि इसके बेचारे का इसमें कोई अपराध नहीं है, इतने साल से तो पहनते हैं, आज फट गया तो क्या हो गया, ठीक है बदल देंगे। ऐसे ये देह भी पुराना जर्जरित होता है, नहीं चाहे उसमें कोई चाहना की अपेक्षा नहीं है, हाँ वो तो अपना नेचुरल रूप से पुराना होता ही है और फिर बदलने का टाइम भी आता है, तो ये नेचुरल है, ऐसा हो गया ही होगा, इसमें क्या है, इसमें दुख होने का क्या कारण है। कुछ समय के बाद ये देह पुराना होएगा, जर्जरित होएगा, उसमें दुखी होने की क्या बात है, और छूटेगा तो भी दुखी होने की क्या बात है। देह के छूटने से हम मरते तो नहीं, अगर मरते तो गतभव में देह छूट गया और अभी मौजूद है, इसका क्या, गद्भव में देह छोड़ के आए कि नहीं, याद नहीं है, लेकिन समझ तो सकते हैं, बात समझ में तो आ सकती है कि हम कोई देह छोड़ करके इस नए देह को धारण किया, अगर वहां मर गए होते तो यहां मौजूद नहीं होते, इसका मतलब कि वहां मरे तो नहीं। चेंज ऑफ प्लेस, क्षेत्र भिन्नता हुई, शरीर की भिन्नता हुई, बात तो एक एक्सचेंज हो गया है इन चीजों का, संयोग का एक्सचेंज हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अनुभव की कोशिश करना चाहिए। हमारी जो समझ है उसका अमलीकरण हुए तभी तो अनुभव होगा, और हम कोशिश करें उसको अनुभव लेने की तब तो अनुभव होगा। तो ये समझ जो है वो अनुभव के लिए है, समझ समझ के लिए नहीं है, समझ अनुभव कराने के लिए है। पुट इट इनटू प्रैक्टिस।
हाँ,
प्रैक्टिस तो करवी पड़े तो ज अनुभव थशे। अनुभव वगर प्रैक्टिस से अनुभव ज्ञान कोई ने मळतु ज नथी। प्रैक्टिस वगर कोई ने अनुभव ज्ञान, ये डॉक्टर बने तो दो साल इंटर्नशिप का होता है कि नहीं, बड़े डॉक्टरों के साथ अस्पताल में चक्कर लगाना पड़ता है, जज बनता है तो उसको कुछ साल एडवोकेट का प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी जज बन सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज काउंट होता है, थियोरिटिकल नॉलेज संसार में भी काउंट नहीं होता है। अगर हम किसी को सर्विस में रखेंगे हमारे ऑफिस में तो सर्टिफिकेट लेके आएगा, देखो मैं इतना पढ़ा हूँ, अपन साइड में रख देंगे, देखा नहीं देखा कर लेंगे सर्टिफिकेट को, एक्सपीरियंस कितने साल का है, इतने साल का, कौन सी कंपनी में है, इसका कोई सर्टिफिकेट है क्या कि हमारे ऐसा हमारे यहाँ इतने साल उसने काम किया है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है। एडवर्टाइज में भी एड में उतना देते कि नहीं देते हैं कि 5 साल का तो कम से कम हमें अनुभवी आदमी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ स्कूल कॉलेज खोली नहीं है कि हमारे पैसे से कोई सीख ले और हम उसका नुकसान भी भोग लें, वो तो हमने नहीं, हमको तो एक्सपीरियंस चाहिए। ये हर जगह अनुभव की कीमत है, यहाँ भी अनुभव ज्ञान की ही कीमत है। और आपको अनुभव होने के लिए हमेशा हमेशा प्रैक्टिस करने का मैदान मिलता है, जो आपका उदय है वही आपका मैदान है। जो भी आपका रोजाना उदय है, खाने का पीने का, अनेक प्रकार के संग प्रसंग आता है, कर्म के सभी प्रसंग होते हैं, वही आपका प्रैक्टिस करने का मैदान है। हमेशा तैयार रहो प्रैक्टिस करने के लिए, बस क्या चाहिए आपको।
निवृत्ति क्षेत्र में अगर जाना है तो ये सब ज्यादा होता,
उसमें ऐसा है कि प्रैक्टिस तो घर में पहले चालू कर दो, ऐसे जाना नहीं है, वरना वहाँ इसका स्मरण आएगा कि हमारे यहाँ तो गद्दा ऐसा है, हमारे यहाँ तो थाली वैसी है, हमारे यहाँ तो बैठने उठने का ये सोफा है ऐसा, हमारा कमरा तो ऐसा है, ये याद आ जाए। पहले यहाँ प्रतिबंध तोड़ो बीच में रह करके, ये हमारे जैन दर्शन की कार्य पद्धति की नीति है, नियम बाद में है, नियम नीति के बिना बनाना नहीं चाहिए, नीति के पूर्वक नियम बनाना चाहिए, नीति माने पॉलिसी। तो अपनी जो पॉलिसी है वो पहले बनाओ, वो पॉलिसी वो है कि पहले तो घर में आप पैदा हुए हैं, घर में बड़े हुए हैं, तो घर में ही प्रतिबंध तोड़ो, जो अटैचमेंट है उसको कमजोर करो या छोड़ो, बीच में रह करके। मिठाई सामने हो और लालच नहीं होवे उसमें ही हमारा पुरुषार्थ है। मिठाई खाने को मिले नहीं और हमने त्याग कर दिया, वो त्याग में कोई दम नहीं है, वो त्याग में कोई दम नहीं है।
लेकिन लालच हो तो भी, कि हम नहीं खावे तो भी तो एक पुरुषार्थ हुआ ना। हाँ। लालच तो बंद मन है, लालच तो हो ही जाएगी
नहीं।
हाँ। लेकिन अगर वो तो भी नहीं खाएंगे,
हम मन को तैयार करें, मन को, मन ने पण केळवणी થઈ શકે છે, मन ने केळवी શકાય છે, એની પણ કાર્ય પદ્ધતિ છે। આપણે મનને કેળવીએ, મનને કેળવી શકાય છે, ઉલટી ઉલટા કેળવો તો વ્યસન થઈ જાય છે। બીડી પીનારને બીડી વિના નથી ચાલતું, ચા પીનારને ચા વિના નથી ચાલતું, ને દારૂ પીનારને દારૂ વિના નથી ચાલતું। તો એને મન ઉલટું કેળવો, સુલટું કેળવનારને જે બીડી પીતા નથી એને ખબર નથી પડતી કે પીવી કે ન પીવી, શું કાંઈ એનો વિકલ્પ જ નથી ઉઠતો, એનું મન કેળવાઈ ગયેલું। એ મનને તમે ગમે તે દિશામાં કેળવી શકો છો, અને એની પણ એક પદ્ધતિ છે, એનું પણ સાયન્સ છે, એનું પણ એન્જિનિયરિંગ છે, વ્યવસ્થિત વાત છે આપણા સત્શાસ્ત્રોમાં। એને એ રીતે તમે કેળવો, બહુ સહજ માત્રમાં તમે શુદ્ધ વિતરાગ થઈ શકો છો। અને આપણી પહેલેથી જ સહજ પરિસ્થિતિથી જ આપણી શરૂઆત છે, કોઈ આર્ટિફિશિયાલિટી નહીં, કોઈ બલજબરી નહીં, કોઈ જબરજસ્તી નહીં, કોઈ દમન નહીં, કોઈ આક્રમણ નહીં, એ પ્રકારથી કોઈ એ રસ્તો લેવાનો નથી। સહજ માત્ર કેવી રીતે પરિણામને કેળવવા એની પદ્ધતિ છે, એનું સાયન્સ છે, એની પ્રેક્ટિસ કરી શકાય છે, અને સહજ દશા ઠેઠ મોક્ષ પર્યંત સહજાત્મ સ્વરૂપની સહજ દશા પ્રગટ થઈ શકે, કેમ કે આત્મા સહજાત્મ સ્વરૂપ છે, તો એની દશા પણ સહજ હોય તો જ એની સાથે એનું સુસંગતતા રહે, નહીંતર વિસંગતતા ઊભી થાય છે। વિસંગતતામાં ક્લેશની સિવાય બીજું કાંઈ હોય ને, એટલે થઈ શકે છે, બધું થઈ શકે છે, અને એવું થઈ શકે છે એને તો અહીંયા એની પ્રશંસા કરે છે કૃપાળુદેવે, કૃપાળુદેવ એની તો ભક્તિ કરી રહ્યા છે આ પત્રમાં પોતે જ। તો એ દેહ ઓર આત્મા કે ભિન્નતા કા જો વિષય હૈ વો ભી બહુ સુંદર હૈ, થોડા અગલે સ્વાધ્યાય મેં નેક્સ્ટ ટાઈમ મેં વિસ્તાર સે લેંગે, થોડો સમય સમાપ્ત હું।